एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, अब निगोद में क्या दशा रहती है जीव की, तो एक श्वास में 8-10 बार एक श्वास। अब श्वास का अर्थ जो है, अपन जो सांस ले रहे हैं वो एक मिनट में 12 से लेकर 18 श्वास लेते हैं। अगर ज्यादा श्वास लो तो फिर चेकअप कराना पड़ता है डॉक्टर के पास, 18 से ज्यादा सांस चले एक मिनट में। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि एक श्वास में 8-10 बार, शास्त्रों में उल्लेख आता है कि 3773 श्वास 48 मिनट में मनुष्य के होते हैं, 48 मिनट माने एक मुहूर्त में श्वासों की गणना 3773 होती है, 2-3 के बीच 2-7 याद करने का तरीका, ये सब मेमोराइजेशन ट्रिक्स हैं, 2-3 है बीच में 2-7 है। तो एक मुहूर्त में जीव के इतने श्वास होते हैं, तो कब होते हैं? अभी अपन देखो तो श्वास, अगर 12 श्वास लेने वाला कोई मनुष्य है तो 48 मिनट में कितने लेगा? एक मिनट में 12 ले रहा है तो 48 मिनट में इतने तो नहीं ले सकता, 18 भी अगर कर दो तो भी नहीं ले सकता इतने। तो एक ऐसा सुझाव आया था कहीं कि 6ठे काल के अंत में जब मनुष्य की आकृति मात्र एक हाथ प्रमाण रह जाती, इतनी एक हाथ, तो एक हाथ प्रमाण छोटे आकृति का जब मनुष्य 6ठे काल के अंत में रह जाता है, तो जो प्राणी जितना छोटा होता है उसकी सांस उतनी फास्ट होती है, उतनी तीव्र गति से होती है। आप पक्षियों को देखिएगा कि कितनी तेज सांस लेते हैं, और हाथी देखिएगा कितना धीमे धीमे सांस लेता है, एक मिनट में 2-3 सांस ले ले, धीमी सांस लेता, कम सांस लेता है। तो उनका ऐसा अनुमान था कि 6ठे काल के अंत में ऐसा हो सकता है कि इतनी सांस ले ले मनुष्य कि 373 48 मिनट में, तो एक मिनट में कितनी? तो 48 से भाग दे दो 3773, इसका 48 से भाग कर दो तो उतनी श्वास एक मिनट में ले। पर ये श्वास का जो गणित है उसको दूसरे प्रकार से अगर अपन लगाएं आज के विज्ञान की सहायता से, तो फिर संभवतः वो गणना आ जाए। ये ब्रीदिंग जो होती है इसको अपन बोलचाल में श्वास कहते हैं, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इनमें बड़ा अंतर है। ब्रीदिंग में क्या होता है कि अपन एक सांस लेते हैं तो उतनी देर में अपने फेफड़े पूरे वायु से भर जाते हैं ऑक्सीजन से, और छोड़ते हैं तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाते हैं। लेकिन अपना जो हृदय होता है, हार्ट, वो अंदर भरी हुई श्वास में से ऑक्सीजन को जो अपने फेफड़े होते हैं वो हार्ट में पहुंचा देते हैं, और वो ऑक्सीजन से भरा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी शरीर में एक फड़कन के माध्यम से धक 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 धक, ये जो हृदय धड़कता है ना, तो उस धड़कन के माध्यम से एक धड़कन में वो पूरा ब्लड सारे शरीर में पहुंच जाता है और पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाता है। और ब्रेन को अगर कुछ सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन न मिले तो उतने सेकंड्स में ब्रेन की कोशिकाओं में जो नुकसान पहुंचता है उस नुकसान की फिर जीवन भर पूर्ति होना संभव नहीं है, इतना भारी नुकसान पहुंच सकता है अगर ऑक्सीजन ब्रेन को सही मात्रा में न मिले तो। और वो जो हृदय की धड़कन होती है उससे एक एक धड़कन में पूरा ऑक्सीजन शरीर में फैल जाता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और अपन नासिका से जो श्वास लेते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं। तो रेस्पिरेशन को अगर अपन देखें तो उसकी गिनती जो होती है एक मिनट में 72 से लेकर 78 प्रमाण होती है। अब 72 से 78 अगर एक मिनट में है तो उसका आप गणित निकालो। 48 से भाग दे दिया आपने, किसी ने किया? 3773 को 48 से भाग दे दीजिए। कैलकुलेटर या मोबाइल है किसी के पास? तीन हजार सात सौ तिहत्तर को 48 से भाग दे दीजिए, कितनी आ रही है गिनती? 3,7,73 और भी कुछ लोग बैठ करके गणित निकाला करते थे कई बार। 3773 divided by approximate 79 आएगा ना, तो देखो कितना मैचिंग है। अभी साइंस के अनुसार 78 बार ये पल्स, ये हृदय की धड़कन जो है यहां से नापी जा सकती है। कितना आ रहा है? ठीक है, तो आ गया ना। उस श्वास को ले लो आप। कहने का मतलब ये है कि हृदय की एक धड़कन जब तक होती है तब तक निगोद में रहने वाला जीव 18 बार मर चुकता है और जन्म भी धारण कर लेता है। तो एक मुहूर्त में आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है कि एक जीव ने 3,36,36,66 मरणानी, 66,336 बार एक जीव एक मुहूर्त में जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है। इनमें से एक इंद्रिय जीवों के जन्म मरण सर्वाधिक है। पंचेंद्रियों के 24 भव होते हैं, आपको लिखना हो लिख लेना, पंचेंद्रियों के 24 भव। फिर चतुरेंद्रीय जीवों के 40 भव, त्रिइंद्रीय जीवों के 60 भव और दो इंद्रिय जीवों के 80 भव होते हैं। अब इनको आप उसमें से घटा लेना, किसमें से? 66,336 में से, तो 66,132 आते हैं करीब, देख लेना। 336 में से इतने घटा लो, कितने? 2 इंद्रिय के 80 है, 132 ना, 132। 66,132 बार एक इंद्रिय का भाव जीव धारण कर लेता है एक मुहूर्त में। तो उस गणित के हिसाब से देखो तो ये स्थूल रूप से बताया कि एक सांस में 18 बार जीव का जन्म मरण हो जाता है निगुद पर्याय में। ये सब लब्धि अपर्याप्तकों की अपेक्षा से, क्षुद्र भाव इसी का नाम है। जन्म्यो मर्यो और भर्यो दुख भार, दुखों के भार को उसको भरना पड़ा, क्योंकि जो भी मनुष्य कर्ज लेता है उसको चुकाना पड़ता है, जो भी कर्म बांधता है उसको आगे चल करके उसका उदय भोगना पड़ता है, तो ये उसको भरना पड़ता है, दुखों का भार उसको सहना पड़ता है। और फिर बड़ी मुश्किल से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं और संसार से बाहर जाते हैं, यानी निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 608 जीव की जो संख्या है वो 3 जगह बताई गई है। एक तो नित्य निगोद कहो या फिर जो अनादि से निगोद से बाहर नहीं निकले, उन जीवों में से 608 जीव पहली बार निगोद पर्याय को छोड़कर बाहर किसी अन्य पर्याय में आते हैं, और 608 जीव संसार से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। वो मुनि पर्याय से ही मोक्ष होती है, और कहीं से तो मोक्ष होता नहीं। और 608 जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। छह महीने आठ समय में 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन को भी प्राप्त हो जाते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन आपको याद है, वो पानी का दृष्टांत था ना, फिटकरी से उसको मिट्टी नीचे बैठा दी, ऊपर से साफ साफ पानी निकाल दिया और वो जो नीचे का कचरा था उसको उठाकर फेंक दिया हमेशा के लिए, अब कभी वो पानी मैला नहीं हो सकता। उसी प्रकार आत्मा में जो सात कर्म प्रकृतियां सम्यक्त को बाधा डालने वाली है उसको नष्ट कर देने पर जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसका नाम क्षायिक सम्यक दर्शन है। अब वो जीव कितना भी राग द्वेष करे, भरत चक्रवर्ती भाई के ऊपर भी चक्र चला दे तो भी मिथ्यात्व का उदय नहीं आने वाला, वो वापस मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता, वो क्षायिक सम्यक दर्शन है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव भी 608 होते हैं। तो अब देखिए, निगोध से जब निकलता है जीव तो निकल करके क्या बनता है, बोले तो भूमि पृथ्वी कायिक बन सकता है, जल जल कायिक बन सकता है। ये क्या वस्तु है पृथ्वी कायिक और जल कायिक? पृथ्वी है काया जिसकी, ऐसे जीव को पृथ्वी कायिक कहते हैं। अपनी काया त्रस है, ये जो त्वचा और ये सात धातुओं से निर्मित अपनी काया है तो अपन त्रस काय कहलाएंगे, त्रस कायिक। और जिस जीव ने पृथ्वी को मिट्टी के कण को ही अपना शरीर बना लिया ऐसा जीव पृथ्वी कायिक कहलाता है। या फिर पत्थर के किसी कण को जिसने अपना शरीर बना लिया, 36 प्रकार की जो पृथ्वियां हैं उनमें से किसी भी पृथ्वी को जिस जीव ने अपना शरीर बना लिया और वो अपनी आयु प्रमाण वहां जीवित है, पृथ्वी का एक जीव की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। माने कोई जीव मरकर अगर पृथ्वी का एक बन जाए और कठोर पृथ्वी बन जाए, जिसे डायमंड है, डायमंड में जाकर के अगर उसका जन्म हो जाए तो 22,000 साल तक के उसकी आयु हो सकती है। और कोमल पृथ्वी अगर मुलायम मिट्टी वगैरह हो तो फिर 12,000 वर्ष की आयु होती है। बहुत सारी जानकारी हम साथ में देते जा रहे हैं ताकि आप लोग फिर आगे जब भी स्वाध्याय करो तो ये सब आपको पका पकाया माल पहले ही मिल गया समझ लो, बहुत ज्यादा आपको मैं परिश्रम न करना पड़े, इसलिए ये सारी जानकारी आपको मिल रही है। आप चाहो तो लिख लेना, नहीं तो फिर अपने बाजू वाले के भरोसे रह लेना, कभी भी पूछ लेना किसी से, है ना। तो भूमि पृथ्वी बन जाता है, कभी जल कायिक भी बन जाता है। जल कायिक, जल कायिक का अर्थ क्या होता है? पानी को जिसने अपना शरीर बना लिया। देखो पानी में रहने वाली मछली अलग वस्तु है, लेकिन खुद पानी बनकर के जो अपना जीवन जीने लगा ऐसा कोई जीव, वो जल कायिक जीव कहलाता। उसकी अवगाहना बहुत छोटी रहती है, पृथ्वी कायिक की भी अवगाहना छोटी रहती है, जल कायिक की भी छोटी रहती है। तो जल कायिक जीव जो है वो जल में बड़े लंबे समय तक के अपना जीवन जीता है। कितने लंबे समय तक? तो उसकी उत्कृष्ट आयु होती है 7,000 वर्ष। और फिर जगन्नायु अंतर मुहूर्त, सभी मनुष्य तिरंचों की सबकी जगन्नायु अंतर मुहूर्त है। देव नारकों की जगन्नायु 10,000 वर्ष है। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्त तिर्यग्योनि जानम च, दो सूत्र है तत्वार सूत्र में आयु बतलाने वाले। तो भूमि जल, फिर पावक यानी अग्नि होता है। अग्नि की आयु जो होती है, जैसे देखिए कितनी विचित्र बात है कि अपन समझते हैं कि माचिस ऐसे जला ली और फर्र से उसमें आग जली तो ये तो कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो घिसने से उसमें जो बारूद लगा रहता है मसाला, वो इसके साथ घिसने पर घर्षण से उष्णता पैदा होती है, उस उष्णता से अग्नि हो जाती है और बुझ जाती है थोड़ी देर में तीली, और लकड़ी जलती रहती थोड़ी देर तक वो भी बुझ जाती है। तो ये अपने को कुछ नहीं समझ में आता इसमें क्या हो रहा है, लेकिन नहीं, वहां भी अग्नि को शरीर बनाकर कुछ जीव आ जाते हैं। तो वो भी जीव है, स्थावर जीव है। इसीलिए कहा है कि श्रावक को स्थावर हिंसा का पूरा त्याग तो नहीं है, लेकिन व्यर्थ की स्थावर हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की स्थावर हिंसा जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। भोजन बनाते समय आप अग्नि जलाते हैं उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप माचिस लेकर के उसमें ऐसे तीली फंसा कर ऐसे ऐसे कैरम बोर्ड जैसे मारते हैं ना स्ट्राइकर, वैसे उड़ा करके उसको जलते हुए नीचे गिरते देखो और उसका मनोरंजन करो आप, तो ऐसी व्यर्थ की स्थावर हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अग्नि भी जीव है। जैसे अपन त्रसकायिक है, वो स्थावर कायिक है, उसमें जान है, उसमें जिंदा प्राणी है, जीवित है, जीव है वहां, तो व्यर्थ की हिंसा नहीं करना चाहिए। अब फिर दीपक की आरती और ये सारे जो प्रश्न हैं, तो उसका विचार करके देखो आप, तो फिर वहां पर ये जो है संकल्पी हिंसा है, जो मनोरंजन के लिए आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी जीव को बाधा पहुंचा रहे, संकल्पी हिंसा है। गृहस्थ जीवन में संकल्पी हिंसा त्याज्य होती है, आरंभी हिंसा का त्याग नहीं है। और फिर कोई पूछे कि भाई दीपक के बिना पूजा नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, लेकिन आपका मन नहीं लग सकता, क्योंकि गृहस्थ के लिए शास्त्रों में आचार्यों ने उपदेश दिया है कि गृहस्थ जब भी पूजा करेगा तो कुछ आलंबन उसको जरूर लेना पड़ेगा, बिना आलंबन के उसका मन स्थिर नहीं हो सकता। गृहस्थ का मन बहुत चंचल होता है। किसी ने कहा है कि 3 बार से ज्यादा नमोकार मंत्र में ध्यान नहीं लग सकता किसी गृहस्थ का। नमोकार मंत्र आप 3 बार ध्यान से पढ़ो, 4थी बार आपका मन खिड़की के बाहर जाएगा, और फिर तो कहां से कहां चला जाए कोई पता ही नहीं, मन भटक जाएगा। तो इसलिए आलंबन लेकर के करना पड़ता है, और वो जो आलंबन है उसमें आरंभ है, माने जीवों को बाधा होती है, और जीवों को बाधा होते हुए भी आपने उससे अपने सुख का उद्देश्य नहीं रखा है। आपने देवशास्त्र गुरु में अपना ध्यान लगाने के लिए आरंभ किया है, इसलिए वो आरंभी हिंसा आपको दुर्गति में नहीं ले जा सकती, क्योंकि उसमें उन जीवों को बाधा तो हुई है, उतना दोष तो निश्चित है, लेकिन जो भक्ति का भाव आपने जागृत करके देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, वो भक्ति का पुण्य इतना विशाल है कि जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने वासुपूज्य भगवान की स्तुति में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, पूज्यं जिनं त्वार्च यतो जनस्य सावद्य लेशो बहु पुण्य राशो, दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशो। तो क्या कहा कि हे पूज्य जिनेन्द्र पासुपूज्य भगवान, आपकी पूजा करते समय जो पूजा करने वाला है उसको सावद्य लेशो, द्रव्य तरी तैयार करने में कुछ दोष तो आता है, दोष तो लगता है। अब दीपक अगर आप न जलाओ तो सिगड़ी जलाकर पानी तो गर्म करना ही पड़ेगा ना। आप कई लोग इतने होशियार होते हैं कि उनको दीपक में तो हिंसा दिखती है और सिगड़ी जलाकर पानी गर्म करने में उनको अहिंसा दिखती है, मतलब इतना विवेक उनका स्थगित हो जाता है कि वो उसको दीपक को हिंसा मानते हैं और फिर अग्नि में जो पानी गर्म किया है उसको हिंसा नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि आप 8 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का निर्माण करोगे, कैसी भी तैयारी करोगे, 8 द्रव्यों में दोष तो लगेगा आपको, लेकिन उस दोष में और इस पुण्य में जब तुलना करके विचार करोगे तो पता चलेगा कि ये पुण्य सागर के समान है, अमृत के समुद्र के बराबर है, और वो जो दोष लगा है आपको वो एक विष की बूंद के समान है। एक ग्लास में अगर विष की बूंद पड़ जाए तो मौत हो सकती है, लेकिन समुद्र के पानी में, अमृत के समुद्र में अगर विष की बूंद पड़ जाए तो उस पानी को पीने वाला कभी मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पूजा के द्रव्य के आरंभ में जो भी दोष लग रहा है वो पूजा की भावना से साफ हो जाता है, और पूजा की भावना आपको सदगति में ही ले जाती है। इसलिए पूजा के द्रव्य संबंधी ज्यादा तर्क वितर्क न करते हुए और ज्यादा होशियारी न बतलाते हुए, जैसा शास्त्रों में वर्णन है और जैसा आपकी परंपरा अनुमति देती है, ये साथ में हम इसलिए जोड़ रहे हैं, ये शास्त्रीय कथन नहीं कर रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आप मात्र इतनी जरा सी बात को लेकर के झगड़े करके धर्म के निमित्त से दुर्ध्यान न करो, ठीक है ना। नहीं तो शास्त्र को अगर आप पढ़ो तो मतलब बिल्कुल अंगूठा जो आप व्यक्ति भी अगर शास्त्र पढ़ ले तो उसको सारी बातें स्पष्ट मिल सकती है कि शास्त्र में क्या विधान है, लेकिन फिर कहीं कहीं जो जैसी पद्धति चलती है वहां पर उसके अनुसार उनको करना चाहिए, करना इसलिए चाहिए श्रद्धा से नहीं, लेकिन वहां की व्यवस्था के हिसाब से उनको वैसा करना चाहिए ताकि विवाद न उत्पन्न हो, और फिर विवाद से दुर्ध्यान और समाज में टूट फूट न पैदा हो, हिल मिलकर जैसा कर रहे हो धर्म ध्यान करो, बस सीधी बात यह है। लेकिन शास्त्रों में आप देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, और उन जानकारियों को प्राप्त करके जहां पर वैसा हो सकता हो वहां पर वैसा देख लीजिए, और जहां नहीं तो वहां पर वैसा, जैसी व्यवस्था हो। व्यवस्था को भंग करने का हम कभी उपदेश नहीं देते, लेकिन शास्त्र में जो बात है उसका उल्लेख हम निर्भीकता के साथ करते हैं। हमें कोई डर नहीं है कि शास्त्र में ये लिखा है इसको छुपा के रखें और फिर ये बात ना बताएं किसी को, फिर इससे लोग क्या कहेंगे, फिर क्या विवाद होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं। वो तो जो बात है साथ में, हम विवाद के लिए हम ये भी कह देते हैं ना कि भाई विवाद नहीं करना अपने को, अपन यहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं। अब वो सामने वाला अगर लवंग चढ़ा रहा है किसी क्षेत्र पर, मान लो अपन उदाहरण ले लें मांगी तुंगी जी, आप गए और फिर आप अपने द्रव्य लेकर के गए, कोई दूसरा गया मराठी था महाराष्ट्रियन था, वो अपनी थाल सजा करके ले गया। अब वो अगर पेड़ा चढ़ा रहा है या फिर वो अगर फूल की माला चढ़ा रहा है या और कोई चीज चढ़ा रहा है, तो आप उसको देख करके अपने मन के भाव मत बिगाड़ो। आप अपने विचार में ये मत सोचो कि वो मिथ्या दृष्टि और मैं सम्यक दृष्टि हूं। और फिर उसका भी ये कर्तव्य है कि देखो ये पुष्प चढ़ा रहा है लेकिन पुष्प बोल करके कुछ और चढ़ा रहा है, चावल के दाने। उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए। दोनों का ध्यान भगवान पर हो तो कल्याण हो, एक दूसरे पर होने से आज तक कल्याण नहीं हुआ और न होगा। सही बात है ना? बस तो फिर अब मन में रखो उसको। सही बात है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर अपना धर्म ध्यान, अपन मंदिर क्यों आए? उसकी थाली देखने के लिए आए थे क्या? अरे उसकी थाली तो आप फोटो में देख लेते किसी को भेज करके, लेकिन मंदिर आकर आप उसकी थाली देखकर दुर्ध्यान करो तो फिर आपका भी नुकसान है, आपका समय भी खराब हो रहा है, आपके पैसे भी खराब हो रहे हैं क्योंकि आप फोकट में तो आते नहीं कभी, और सब तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है। और फिर जो कर्म बंधेंगे आपको वहां पर एक दूसरे के प्रति कषाय करके, वो कोई पुण्य कर्म तो नहीं बंधेंगे हमारे ख्याल से, आपका जो ख्याल हो आप जानो। पुण्य का बंध होगा क्या एक दूसरे को देखकर कषाय करने से? नहीं होगा। तो फिर आप अपनी थाल देखो और आपको जो चढ़ाना है अच्छे ढंग से बढ़िया चीज चढ़ाओ। 8 द्रव्य हैं, कितने सुंदर द्रव्य हैं, उनसे भगवान की पूजा करो। तो ये पावक की जो बात आई ना अग्नि की, तो अग्नि वास्तव में अग्नि को शरीर बनाकर जीने वाले जीव उसमें रहते हैं, अग्नि का एक जीव होते हैं लेकिन स्थावर जीव होते हैं, इसलिए व्यर्थ में अग्नि की विराधना नहीं करना। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीपक का विरोध करते हैं लेकिन स्कूटर में जो अग्नि होती है उसका विरोध नहीं करते, आते हैं स्कूटर से। कहां आते हैं? मंदिर। स्कूटर से मंदिर आएंगे लेकिन दिया जलाने में उनको हिंसा लग रही है, स्कूटर चलाने में हिंसा नहीं। वहां क्या जलता है स्कूटर में? पेट्रोल जलता है कि नहीं जलता? तो ऐसा हो जाता है, बुद्धि मारी जाती है कषाय के कारण, बस मनुष्य का विवेक नष्ट होता है। ये नियम है, कषाय अगर ज्यादा आ जाए, देखो अगर किसी में संवाद चल रहा हो और संवाद एक अगर संवाद पर अडिग रहे और दूसरा विवाद पर उतर जाए तो विवाद करने वाला हार जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्रोध आ गया। आर्ग्यूमेंट में कभी भी जिसको क्रोध आता है उसकी बुद्धि फिर सही तर्क देने में समर्थ नहीं होती, वो चिल्लाने लग जाता है, फिर कई प्रकार वो हार के प्रथम लक्षण है क्रोध। क्रोध क्यों आया? क्योंकि अब मेरी नहीं चल रही है। क्रोध आता कब है ये विचार करो, तो उसके बाद फिर आप एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अब ये, फिर वो सामने वाला भी सोचता है कि भाई इसका गुस्सा मत बढ़ाओ, तो वो चला जाता है और ये सोचता है कि मैं जीत गया। अक्सर ऐसा होता है, कभी भी क्रोधी जीतता नहीं है। अग्नि कायिक जीव की पर्याय को प्राप्त होता है तो वो 3 दिनों तक उसमें जी सकता है अग्नि के शरीर में। अग्नि से कई दूसरे जीव नष्ट हो सकते हैं लेकिन खुद जो अग्नि है, जिस जीव ने अग्नि को ही अपना शरीर बनाया है, वो वहां बकार जीवित रहती है। तो 3 दिन उसकी उत्कृष्ट आयु है। और उसके बाद लिखा पवन। पवन का अर्थ क्या है? अब किसी का नाम हो तो भाई उसकी चर्चा नहीं है यहां पर, यहां पवन का अर्थ है वायु। तो ये वायु को अपना शरीर बना करके भी कई जीव जीते हैं। वायु की उत्कृष्ट आयु 3000 वर्ष। है कि नहीं आश्चर्यजनक बातें हैं ये सारी? स्वाध्याय न करने के कारण पता नहीं रहता अपने को, और एक बार आप पंखा चला दो तो फट 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 पंखे की मार से बहुत सारे वायु का एक जीव अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं। हो सकता है यहां की हवा वाले जो जीव है वो 3000 वर्ष की आयु वाले हों, क्या पता। इसलिए जब बहुत जरूरी हो, देखो इसीलिए कहा है ना कि गृहस्थ स्थावर हिंसा से बच नहीं सकता, लेकिन उसको अनावश्यक स्थावर हिंसा नहीं करना चाहिए। सवेरे का समय जब ठंडी हवा चल रही हो तब तो कम से कम पंखा, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। यह सब उपदेश नहीं है, शास्त्रों का उपदेश नहीं है। शास्त्रों में नहीं कहा कि तुम दोपहर में चालू रखो लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि व्यर्थ में किसी जीव की विराधना क्यों करना, व्यर्थ में। तो पवन वायु, अब जैसे गाड़ी में आते हैं मंदिर, दिया जलाने में तो हिंसा हो रही है, लेकिन गाड़ी में वो जो इंजन का घूमता है, जो क्या बोलते हैं उसको, फैन जो होता है ना इंजन का, जब उसकी मोटर चलती है तो पंखा घूमता है, तो रेडिएटर का जो पंखा घूमता है उस पंखे में क्या वायु की फटकार से जीवों की हिंसा नहीं होती? होती है, लेकिन अब गृहस्थ जीवन में ये सब आरंभ चलता रहता है। पर फिर भी ऐसा उपदेश दिया कि भाई ठीक है, गृहस्थी है और गृहस्थ जीवन में बहुत कर्मों का बंध होता है, आरंभ भी होते हैं, परिग्रह भी होता है, पर तो भी बनती कोशिश, ऐसा प्रयास करो कि जीवों को कम बाधा हो। अब जितने में अपना काम नहीं चल रहा है वो तो करना ही पड़ेगा, और जितने में चल जाता है उसको छोड़ दो। अनावश्यक हिंसा, अनावश्यक जीवों की विरोधना नहीं करो, क्योंकि वो एक अपेक्षा से अपन विचार करो तो अपना ही वंशज है कोई। देखो वो जो पुद्गल परमाणु है, ये समझ लो कि जैसे मान लो अपन कभी वायु कायिक जीव रहे या अग्नि कायिक रहे, अपना शरीर छूट गया, अपन आज मनुष्य पर्याय में बैठे हुए हैं, और वो छूटा हुआ जो शरीर था उसको किसी और जीव ने धारण कर लिया, इसीलिए इनको धातु कहते हैं। धातु कहते हैं कि वो जो शरीर होता है उसको कोई दूसरा जीव भी धारण कर सकता है। जल का भी यही हाल है, समुद्र में देखो 7000 वर्ष उत्कृष्ट आयु है पानी की, अब समुद्र कितने सालों से, 7000 साल से है क्या, कोई हिसाब नहीं, अनादिकाल से है सागर और द्वीप और नदियां सब। तो उसमें जो जल है उसमें 7000 वर्ष की आयु पूर्ण करके कोई जीव तो चला जाता है किसी पर्याय में, और कोई दूसरा जीव आकर के उसमें उसी जल के कण में अपना शरीर बना करके उसको धारण कर लेता है। आगे ना समझ। तो इस प्रकार निकसी, निगोद से निकलकर भूमि पृथ्वी का एक बना, जल जल का एक बना, पावक अग्नि का एक बना, और पवन वायु का एक भी बना, और प्रत्येक वनस्पति थयो, और प्रत्येक वनस्पति शरीर को भी इसने जीव ने धारण किया। प्रत्येक वनस्पति किसको कहते हैं? अब निगोद तो साधारण वनस्पति समझ लो, एक शरीर में अनंत जीव है, और प्रत्येक वनस्पति उसको कहते हैं कि जहां एक शरीर में एक जीव है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं।